ये आकाशवाणी दिल्ली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित बजट पारित किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल तथा जॉर्ज कुरियन ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और दिल्ली मेट्रो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला यात्रियों के लिए ऑन द स्पॉट टेबल आर्ट और सुडोकू प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भाजपा के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को आज दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया। श्री बिष्ट को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपाध्यक्ष पद के लिए श्री बिष्ट का नाम प्रस्तावित किया। श्री बिष्ट ने विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को 17,000 से अधिक मतों से हराया था। इस बीच पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।
मैं निश्चित रूप से मेरे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और मेरे प्रधानमंत्री, मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके नेतृत्व वाली टीम, नड्डा जी, उनके आशीर्वाद से और यहाँ मुख्यमंत्री के माध्यम से और उनके मंत्रिमंडल के माध्यम से और सभी विधायकों के नाम से जो मुझे चिन्हित किया गया है, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना हूँ।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल में देखकर डर गए हैं, जिसकी वजह से वे विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर दिल्लीवासियों का ध्यान भटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के चित्र को लेकर झूठ फैला रही है। नजफगढ़ से भाजपा विधायक नीलम पहलवान ने आज दिल्ली विधानसभा में नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने का मुद्दा उठाया है। सदन में उन्होंने कहा कि 1857 की आजादी की लड़ाई में राजा नाहर सिंह ने नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के क्षेत्र में शामिल किया। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि नजफगढ़ क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाना उनकी प्राथमिकता है, इसलिए उन्होंने आज सदन में नजफगढ़ का नाम राजा नाहर सिंह के नाम पर रखने का मुद्दा उठाया।
1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बड़ा बलिदान दिया था और अंग्रेजों से नजफगढ़ को आजादी का रूप दिया था और दिल्ली प्रांत का एक हिस्सा बनाया था। तो आज जब मुझे पहला मौका मिला तो मैंने जाटों की जो शान है राजा नाहर सिंह, उनके नाम पर अपने नजफगढ़ क्षेत्र का नाम रखने के लिए सदन में मुद्दा उठाया।
महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत को अपनी विरासत पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि ये आधुनिक प्रबंधन पेशेवरों और नीति विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय है। श्री मोदी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि दुनिया ने आश्चर्य से देखा कि किस तरह करोड़ों लोग प्रयागराज में संगम के तट पर एकत्र हुए। इन लोगों को कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था, इसके बावजूद करोड़ों लोग महाकुंभ आए और संगम में पवित्र स्नान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग समेत सभी लोगों ने संगम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। 45 दिन के इस आध्यात्मिक महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, विदेशी प्रतिनिधि, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा कई केंद्रीय मंत्री सहित प्रमुख हस्तियों ने पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ मेला क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के एयर शो के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा ने श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभव दिया। इस दौरान यातायात व्यवस्था का भी सख्ती से पालन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित बजट पारित किया है। ये जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने दी। इस बजट अनुमान में सैलरी हेड में कुल 921 करोड़ 58 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें रेगुलर फैकल्टी सैलरी के लिए 310 करोड़ 42 लाख रुपए, रेगुलर नॉन फैकल्टी सैलरी के लिए 120 करोड़ 93 लाख रुपए और अन्य विषयों के लिए 109 करोड़ 40 लाख रुपए शामिल हैं। बिल्डिंग, पुस्तकें, जर्नल्स, प्रयोगशाला उपकरण, क्लासरूम उपकरण और फर्नीचर, कंप्यूटर, परिसर विकास और सीसीटीवी सर्विलेंस जैसे पूंजीगत आस्तियों के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मेसेमिनो ने आज नई दिल्ली में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ अपना अनुभव साझा किया और उन्हें अंतरिक्ष अन्वेषण में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यालय की सुविधाओं का भी जायजा लिया, जिसमें एआरवीआर लैब, अटल टिंकरिंग लैब और भाषा प्रयोगशाला आदि शामिल है। विद्यार्थियों से संवाद में श्री मेसेमिनो ने भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्वपूर्ण बताया और अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष में भोजन और शून्य गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने के बारे में विद्यार्थियों के कई सवालों का जवाब भी दिया। अंतरिक्ष विकिरण, भारी आयनों और मानव अंतरिक्ष मिशनों के जैविक प्रभाव तंत्र और जैव चिकित्सा प्रतिवाद पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर सूद ने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान के मिशन लगातार बढ़ रहे हैं और इससे उत्पन्न होने वाले विकिरण का प्रभाव भविष्य में भी बढ़ेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। प्राणी मित्र पुरस्कार 5 उप श्रेणियों में दिए गए, जिनमें वकालत, अभिनव विचार और आजीवन पशु देखभाल शामिल है। पशु कल्याण संगठनों और कॉरपोरेट संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी निकायों या सहकारी समितियों के लिए 2 पुरस्कार प्रदान किए गए। जीव दया पुरस्कार 3 उपश्रेणियों में दिए गए हैं, जिनमें व्यक्ति, पशु कल्याण संगठन और स्कूल, संस्थान, शिक्षक या बच्चे शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य पशु कल्याण और संरक्षण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्कृष्ट व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देना है। मीडिया से बातचीत में श्री बघेल ने कहा कि ये पुरस्कार नागरिकों में जागरूकता बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ के एक पुरस्कार विजेता अखिल जैन ने प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
प्राणी मित्र अवार्ड जो आज दिया गया है, मैं तहे दिल से माननीय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन एवं माननीय मंत्री महोदय का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और यह अवार्ड जो है अपने सभी सहयोगी साथियों को और अपने माता पिता और अपने गुरुओं को समर्पित करता हूं। ये निश्चित तौर पे जब गौ का कल्याण होगा तो ही समझ लीजिए किसान का कल्याण होगा।
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आज भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य तथा संगीत महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वसुधैव कुटुम्बकम नामक ये उत्सव सांस्कृतिक सद्भाव और कलात्मक उत्कृष्टता का शानदार प्रदर्शन है।
इस महोत्सव में रूस, मंगोलिया, रवांडा और भारत की कलात्मक अभिव्यक्तियों का आकर्षक मिश्रण दिखाया गया। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभाषीष पांडा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की महानिदेशक के नंदिनी सिंगला और रवांडा, रूस और मंगोलिया के राजदूतों सहित विशिष्ट अतिथि शामिल रहे। वहीं इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक सद्भाव और कलात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला यात्रियों के लिए विशेष रूप से ऑन द स्पॉट टेबल आर्ट और सुडोकू प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन 3 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं का कल राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर शुभारंभ होगा, वहीं 3 मार्च को दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर और 4 मार्च को दिल्ली हाट INA मेट्रो स्टेशन पर प्रतियोगिता आयोजित होगी। सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली मेट्रो के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ऑनलाइन क्विज का आयोजन कल से 4 मार्च तक होगा। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज क्षेत्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ दौरा कर नालों और अन्य परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के मौसम से पहले ही नालों की सफाई के साथ अन्य सभी इंतजाम कर लिए जाएं, ताकि लोगों को जलभराव जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। दिल्ली नगर निगम ने आज शाहदरा उत्तरी जोन में सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्देश्य सफाई कर्मियों को क्षय रोग, इसके लक्षण, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना था। इस पहल का नेतृत्व शाहदरा नॉर्थ जोन के उपायुक्त ने किया। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति पिछली आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई शराब नीति पर सदन में रखी गई सीएजी रिपोर्ट की जांच करेगी। इस रिपोर्ट में शराब नीति से राज्य के खजाने को 2000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व घाटे की बात कही गई है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज सदन में सीएजी रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को भेजे जाने की घोषणा की। ये समिति 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय को ये निर्देश भी दिया गया है कि रिपोर्ट को जल्द से जल्द दिल्ली के आबकारी विभाग को भेजकर इस मामले में जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट 1 महीने के भीतर मंगवाई जाए। इससे पहले आज सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक प्रकट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली विधानसभा में आज शराब नीति पर पेश सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा शुरू करते हुए मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं से 2000 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे की वसूली की जानी चाहिए। ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखर रॉय ने कहा कि नई शराब नीति के कारण महिलाओं पर अत्याचार में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये शराब नीति सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ही लाई गई थी। वहीं भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि शराब नीति के तहत नई दुकानों को मंदिरों, गुरुद्वारों और स्कूलों के पास भी खोला गया। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट के बहाने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार का चरित्र खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में पुरानी नीतियों की खामियों का भी जिक्र किया गया है। भाजपा विधायक अभय वर्मा ने सदन को बताया कि इस शराब नीति के कारण शराब व्यापारियों का कमीशन बढ़ गया। भाजपा विधायक अजय महावर, ओपी शर्मा, सूर्य प्रकाश खत्री, हरीश खुराना, करनैल सिंह ने भी नई शराब नीति पर हुए खुलासे पर अपनी बात रखी। मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार को करोड़ों रूपये का राजस्व घाटा हुआ। इससे पहले विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विशेष उल्लेख के मामले उठाए गए। संगम विहार से भाजपा विधायक चंदन चौधरी ने पेयजल संकट, गंदे पानी और टूटी हुई सड़कों का मुद्दा उठाया। दिल्ली में आज हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे के दौरान गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को आज दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित बजट पारित किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री SP सिंह बघेल तथा जॉर्ज कुरियन ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। और दिल्ली मेट्रो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला यात्रियों के लिए टेबल आर्ट और सुडोकू प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।